ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायः शिवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद सात अध्याय आठ श्लोक 56। श्री विष्णु पार्षदाउचो अद्वैतद हरि नर रूपम अद्भुतम ते, अद्वैतद हरि नर रूपम अद्भुतम ते, दृष्टम न शरण सर्वलोक शर्म, दृष्टम न शरण सर्वलोक शर्म, स्वयं ते विधिकर इस विप्रसप्त, स्वयं ते विधिकर इस विप्रसप्त, तस्येदं निधनम् अनुग्रहाय विद्म। श्री विष्णु पार्षदाउचो अद्वैतद हरि नर रूपम अद्भुतम ते, दृष्टम नः शरण सर्वलोक शर्म, सोयम् ते विधिकर इस विप्रसप्त, तस्येदम् निधनम् अनुग्रहाय विद्म। श्री विष्णु पार्षदाउचो अद्वैतद हरि नर रूपम अद्भुतम् ते, दृष्टम नः शरण सर्वलोक शर्म, स्वयं ते विधिकर इस विप्रसप्त, तस्येदं निधनम अनुग्रहाय विद्म। अद्वैतद हरि नर रूपम अद्भुतम ते, स्वयं ते विधिकर इस विप्रसप्त, तस्येदं निधनम अनुग्रहाय विद्म। श्री विष्णु पार्षदाउचो अद्वैतद हरिनर रूपम अद्भुतम ते, दृष्टा न शरणद सर्वलोक शर्म, स्वयं ते विधिकर इस विप्रसप्त, हे विष्णु पार्षदाउचो दैतद हरिनर रूपम अद्भुतम ते दृष्टाम्ना शरणद सर्वलोक शर्मा स्वयं ते विधिकार शिवे प्रसप्त शब्दार्थ श्री विष्णु पार्षदाउचो विष्णु लोक के वैकुंठ लोक के भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा अद्य आज एतद् यह हरिनर आधा सिंह तथा आधा पुरुष रूपम रूप को अद्भुतम अद्भुत ते तुम्हारा दृष्टम देखा हुआ न हमारा शरणद शाश्वत शरण प्रदान करने वाला सर्वलोक शर्मा विभिन्न लोकों में सौभाग्य लाने वाला सह वह अयम यह ते तुम्हारा विधिकर आज्ञापालक ईशा हे ईश्वर विप्रसप्त ब्राह्मण द्वारा स्थापित तस्य उसका इदम यह निधनम बद्ध अनुग्रहाय विशेष कृपा के लिए विद्मा हम समझते हैं अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विष्णु लोक के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की हे स्वामी हे परम शरणदाता आज हमने नृसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है हे भगवान हम यह समझते हैं कि हिरण्यकश्यपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था किंतु उसे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था जिसे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है आवृत्ति करेंगे विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की है हे स्वामी हे परम शरणदाता आज हमने नृसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है हे भगवान हम यह समझते हैं कि हिरण्यकश्यपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था किंतु उसे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था जिसे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है तात्पर्य हिरण्यकश्यपु का इस धरा पर आविर्भाव तथा भगवान के शत्रु के रूप में कार्यशील रहना पूर्व नियोजित था जय तथा विजय को सनक सनत कुमार सनंदन तथा सनातन नामक ब्राह्मणों ने श्राप दिया था क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को रोका था भगवान ने अपने सेवकों को दिए गए श्राप को स्वीकार किया वे भौतिक जगत में जाने और श्राप से मुक्त होने पर वैकुंठ लोक वापस आने के लिए राजी हो गए यद्यपि जय तथा विजय अत्यंत विद्विग्न थे लेकिन भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे शत्रु की तरह कार्य करें जिससे तीन जन्मों के बाद वे वापस आ सकें अन्यथा सामान्य तौर पर सात जन्म लेने पड़ते हैं। इस आदेश का जय तथा विजय ने भगवान के शत्रुओं की भूमिका निभाई। इस आदेश पर जय तथा विजय ने भगवान के शत्रुओं की भूमिका निभाई और जब ये दोनों मृत थे तो समस्त विष्णु दूतों ने समझा कि भगवान द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध एक प्रकार से उस पर विशेष कृपा थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध के अंतर्गत भगवान नृसिंह देव द्वारा असुरराज का वध नामक आठवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अतैद हरि नर रूप अद्भुतम ते दृष्टम नह शरण सर्वलोक शर्म सोयम ते विधिकर इस विप्रसप्त तस्येदम निधनम अनुग्रहाय विद्म। विष्णु लोक के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने प्रार्थना की, हे स्वामी, हे परम शरण दाता, आज हमने नृसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, यह हम समझते हैं कि हिरण्यकश्यपु आपकी सेवा में रत्न रहने वाला जय ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। पीछे के दो श्लोकों में 42 लोक के वासियों ने भगवान का प्रार्थना किया है, तो 42 के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके विमल जश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा वह भाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी तरह वध कर दिया है जिस प्रकार कोई भीषण रोग को ठीक कर देता है। हर लोक के वासियों ने भगवान नृसिंह का प्रार्थना अपने अपने ढंग से दिए हैं। तो आपने सुना, पीछे बहुत सारे लोगों ने भगवान नृसिंह देव को सम्मान दिया है, भेंट दिया है, प्रार्थना किया है। किन्नर जो अनेक प्राणी हैं, जैसे किन्नर हैं, यक्ष हैं, नाग हैं, सिद्ध लोक के वासी हैं, चारण लोक के वासी हैं, ब्रह्म लोक, हर लोक के निवासियों ने भगवान नृसिंह देव को भेंट दिया है और प्रार्थना दिया है। तो किन्नर लोक के वासियों ने भी कहा है, परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त न होकर हम सभी ससुर की बेगार में लगाए गए थे और आपने इस पापी का वध कर दिया है। अतएव हे नृसिंह देव, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, कृपा करके हमें हमारे संरक्षक बने रहें। भगवान नृसिंह देव विशेष जो है प्रार्थना के विष्णु लोकों के वासी, भगवान के पार्षद, जो भगवान के पार्षद हैं वैकुंठ लोक के वासी, उन लोगों की प्रार्थना जो है अंतिम में दी गई है कि भगवान के जो हमेशा साथ में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, उन लोगों की प्रार्थना जो है बहुत सुंदर है। ऐसे तो सब लोग अपने अपने ढंग से प्रार्थना किए हैं, लेकिन जो विष्णु के पार्षद हैं ये अंतिम में भगवान से अपना निवेदन प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हम लोग जानते हैं कि जय आपका भक्त था। जय और विजय दो भगवान के पार्षद थे और पार्षदों ने ही ये प्रार्थना की है कि ऐसे भी जय जो हिरण्यकश्यपु बना था उसको आपने मारा है, तो मारकर भी आपने उस पर विशेष अनुग्रह किया है, विशेष कृपा किया है, और यह पहले से पूर्व नियोजित था कि किस तरह से जय विजय साप को प्राप्त करेंगे, फिर असुर जोनि में जाएंगे और भगवान से विरोध करेंगे और विरोध करके 3 जन्म में ही भगवान के धाम में वापस आ जाएंगे। ऐसे 7 जन्म लगने वाले थे। इन भगवान ने ही सलाह दिया कि देखो, आप लोग अगर मुझसे बैर करके, शत्रुता करके रहोगे तो 3 जन्म में वापस आ जाओगे। तो 3 जन्म कौन कौन से हैं? एक तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, और कंस और दंत वक्र और शिशुपाल, दंत वक्र और शिशुपाल ये तीन जो है तीन जन्म असुर बनकर रहे। कहा गया कामाद गोप्या भयाद कंस चेत और छेदी नरेश माने शिशुपाल और दंत वक्र ये लोग जो है ईर्ष्या करके भगवान से द्वेष करके गोपियों ने काम बस भगवान को जीता, अपनी काममयी प्रेम लीलाओं से भगवान को प्राप्त किया। काम गोप्या कामात भयात कंस, कंस ने भय बस भय से भगवान का चिंतन किया, हमेशा भयभीत रहता था और भगवान का चिंतन करता था, भय से भगवान को प्राप्त किया। और छेदी नरेश शिशुपाल ये लोग ईर्ष्या बस भगवान से ईर्ष्या करके शत्रुता करके और अन्य लोग भक्ति से भगवान को प्राप्त किए। जो भक्त हैं भगवान को भक्ति से प्राप्त करते हैं, लेकिन जय विजय भगवान के पार्षद थे और ब्राह्मणों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के द्वारा अभिशप्त होकर असुर शरीर प्राप्त किए। वैकुंठ में रहने वाले जो भगवान के निजी पार्षद थे, जय विजय थे, जो द्वारपाल थे, वैकुंठ के गेट में रहते थे, एक दिन ऐसी घटना घटी कि चार कुमार जो हमेशा कुमार अवस्था में रहते हैं, सनक सनत सनंदन सनत कुमार जो चार हैं जिनको कुमार कहा जाता है, इनको चार कुमार या कुमार कह करके भी जाना जाता है, जो हमेशा कुमार अवस्था में रहते हैं, पांच वर्ष के ही अवस्था में रहते हैं, इनको चार कुमार कहा जाता है और नंगे रहते हैं ये लोग, जबकि शिव जी के भी अग्रज हैं, शिव जी से भी बड़े हैं ये लोग, बड़े भाई हैं, ये हमेशा नंगे रहते हैं और पांच वर्ष से ऊपर नहीं जाते हैं। क्यों इस अवस्था में रहते हैं? बड़ा शरीर प्राप्त करके अच्छा शरीर को डेकोरेट कर सकते थे, शादी विवाह कर सकते थे, कोई बहुत बिजनेस व्यवसाय कर सकते थे, लेकिन क्यों इसी रूप में रहते हैं? उन्होंने भगवान से कहा कि हम लोग कुमार अवस्था में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि बड़े हो जाएंगे और अच्छा डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, और शादी हो जाएगा तो फिर बंधन में हो जाएंगे, गृह कार्य नाना जंजाला और घर गृहस्थी के अनेक कार्यों में हमारा समय जो है चला गया, इसलिए है प्रभु कृपा कीजिए कि हम इसी अवस्था में रहें, कुमार अवस्था में ही, इससे आगे न बढ़ें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे तो अनेक प्रकार के सूट बूट सिलाना पड़ेगा अनेक प्रकार के BMW मर्सिडीज कार रखना पड़ेगा अनेक नौकर चाकर रखना पड़ेगा, अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, एरोप्लेन है, अनेक प्रकार के तकनीकी में हमें समय व्यतीत करना पड़ेगा, इसीलिए हम पांच वर्ष में ही रहना चाहते हैं, कुमार अवस्था में ही। इसलिए चार कुमार जो बड़े ज्ञानी हैं, जिनसे ज्ञान लेने के बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, वो लोग नंगे रहते हैं कॉफिन भी नहीं धारण करते हैं कॉफिन कंता खल भाग्यवंता, जबकि योगी लोग कॉफिन कमंडल धारण करते हैं, लेकिन चार कुमार कॉफिन भी नहीं पहनते हैं और बिल्कुल नंगे कहीं भी जाते हैं और चारों साथ में रहते हैं हमेशा साथ में रहते हैं तो एक दिन खेलते खेलते वो लोग वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच गए और नंगे ऐसे ही चप्पल चंचल क्रीड़ा से युक्त अपने चप्पल बाल्य स्वभाव में जब बैकुंठ के गेट में प्रवेश करने लगे तो जय विजय रोक दिए। जय विजय द्वारपाल हैं तो इसलिए देखे कि ये नंगे लड़के कहाँ जा रहे हैं, को जाने का क्या अभिप्राय है, वे नहीं समझ पाए। जय विजय भी भगवान के माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई थी, भगवान की स्व माया ने जय विजय को मोहित कर दिया था, इसलिए रोक दिए। क्यों मोहित कर दिए कि जय विजय बहुत बड़ा अपराध कर दिए थे लक्ष्मी जी के प्रति। एक बार लक्ष्मी जी भी बैकुंठ से बाहर कहीं गई थी तो आ रही थी तो रोक दिए वो लोग कि आप नहीं जा सकती हैं, आपका कोई पास है आईडी प्रूफ है। जय विजय लक्ष्मी जी को भी रोक दिए जो भगवान की अर्धांगिनी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो और उसकी वाइफ हो। तो प्राइम मिनिस्टर के वाइफ को भी कोई कि नहीं आपको हम नहीं जाने देंगे, आपका आईडी होना चाहिए, आपका कोई पास होना चाहिए। तो जय विजय लक्ष्मी जी को रोक दिए। लक्ष्मी जी कभी कभी बैकुंठ से बाहर भी जाती हैं, कभी कभी जगत का अवलोकन करने की लक्ष्मी जी बैकुंठ से बाहर चली जाती हैं। तो लक्ष्मी जी बड़े शान शौकत में थी, नारायण की अर्धांगिनी है तो उनको कौन रोक सकता है भाई, नारायण की बेगम है, बेगम जिसको कोई गम न हो उसको बेगम कहते हैं। तो बिना गम के रहती थी, कहीं भी आना जाना। लेकिन उनको भी एक दिन जय विजय रोक दिए, बोले कि नहीं जा सकती हैं, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। वो लोग दिखा दिए बोर्ड कि आपको बिना परमिशन अंदर आना मना है। तो लक्ष्मी जी को बड़ा ये लगा कि अरे ये क्या हो गया आज, ऊपर से कोई आदेश है क्या, आप लोगों को कोई आदेश दिया है, आप नहीं जा सकती हैं, अपना आईडी प्रूफ दिखाइए, अपना पास दिखाइए। तो लक्ष्मी जी किसी तरह से कैसे भी उन लोगों को समझा बुझा करके अपना आईडी प्रूफ दी होंगी, अंदर गई फिर बाद में कहीं कि इन लोगों को जल्दी यहां से ट्रांसफर करिए। ये जो दो द्वारपाल हैं यहाँ रहने के काबिल नहीं है, हमसे आईडी लोग मांग रहे हैं। इन लोगों का कैसे भी यहाँ से ट्रांसफर करना है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मोहलत दीजिए। लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा हो गया था। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि इन लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और किसी को रोकना ठीक, लेकिन जब हमको ही ये लोग रोक रहे हैं तो फिर आगे क्या होगा, आगे कौन हवाल। तो भगवान विष्णु ने ऐसी योजना बनाई कि ठीक है, तो उन्होंने ऐसे सुनियोजित ढंग से कि उन लोग को भी न लगे कि हम लोगों ने लक्ष्मी जी को अपमान किया, इसलिए नारायण जो है हम लोग को यहाँ से गेट आउट कर रहे हैं। भगवान अपने ऊपर कोई क्लेम नहीं लिए और भगवान की योजना से एक दिन चार कुमार जय विजय के पास आ गए और बिना अनुमति लिए अंदर जाने लगे। तो उन लोगों को जय विजय को बहुत हो गया कि ये बच्चे बड़े शरारती हैं, बिना पूछे अंदर जा रहे हैं, रोक दिए वो लोग। रोक दिए तो चार कुमार बड़े तेजस्वी हैं और ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हैं, जिनको शिव जी भी प्रणाम करते हैं, नारद जी भी प्रणाम करते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं, जितने भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सब लोग प्रणाम करते हैं चार कुमारों को, सबके द्वारा वंदनीय हैं। तो जब रोक दिए तो चार कुमारों ने साथ दे दिया कि तुम लोग भगवान के दर्शन से वंचित रखना चाहते, इसलिए तुम लोग जय विजय नहीं हो, तुम लोग तो वास्तव में जय विजय तुम लोग का नाम है, लेकिन इस नाम के अनुसार तुम लोग में गुण नहीं है। जो भगवान से दर्शन से भगवान के दर्शन में जो बाधा दे वो कैसा जय विजय है। जय और विजय, जो माया से जो जय प्राप्त कर लिया है, माया के ऊपर जय और विजय प्राप्त कर लिया है, तो भगवान के दर्शन में कैसे बाधा दे सकता है। कुनो तो भगवान से दर्शन कराना चाहिए था। वो भी चार कुमार बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे, बहुत नित्य मुक्त थे, वो हमेशा भगवान के ही भजन में रहते थे। जय चार कुमार, कभी उनमें भौतिक काम क्रोध लोह मोह मद मत्सर नहीं होता है। चार कुमारों में कुमार अवस्था में काम होता ही नहीं है और लोभ भी नहीं होता है। बच्चों में कोई वस्तु के लिए उतना लोभ नहीं होता है, कुछ इच्छा भी होता है तो इच्छा उनका तिरोहित हो जाता है। चार कुमार हमेशा भगवान के चिंतन में, हमेशा भजन में, कोई आसक्ति नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई उम्र का भय नहीं, हमेशा उसी पांच वर्ष के ही अवस्था में रहते हैं। जब लोगों का उम्र ढलने लगता है तो बहुत चिंता आती है, वो चिंता मुक्त है चार कुमार, हमेशा उसी अवस्था में रहते हैं। जब आदमी बड़ा होने लगता है, थोड़ा पढ़ाई करने लगता है, फिर पढ़ करके डिग्री ले लेता है तो नौकरी की चिंता हो जाती है, और नौकरी हो जाती है तो फिर छोकरी की चिंता हो जाती है और छोकरी हो जाती है तो फिर बड़ा घर का चिंता हो जाता है, फिर ज्यादा पैसा कमाने का चिंता हो जाता है, फिर वो भी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की चिंता हो जाती है, उनको बड़ा करना, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना, उनका भी शादी विवाह करा देना, फिर बच्चों को तैयार कर लेता है तो उम्र और बढ़ जाता है, फिर सफेद बाल सफेद होने लगते हैं तो फिर चिंता हो जाती है कि अब हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। वृद्धावस्था चिंताग्रस्त आदमी वृद्धावस्था के दहलीज पर जाता है तो चिंता से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन चार कुमार चिंता मुक्त रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, उनका कुछ है ही नहीं, न घर है, न घर में कोई सामग्री की चिंता है, न कोई आपूर्ति करने की है, न कोई अभाव है, न कोई प्रभाव है, कोई चिंता नहीं रहता उनको। जहां जाते हैं वहीं हाथ में लेकर खा लेते हैं, करपात्री चार कुमार हाथ में ही जो मिलता है खा लेते हैं, न उनके पास कोई थैला है, न कोई सूटकेस है, न कोई पात्र है, कुछ नहीं है कहीं भी सो जाते हैं। आपके पास बहुत बड़ा बैग हो, बहुत कैश हो तो कहीं नहीं सो सकते हैं, भाई सोएंगे तो कोई ले जाएगा अगर आप सोएंगे खूब वीआईपी सूटकेस लेकर के और पैसा भी है तो सोएंगे तो कोई भी ले जाएगा, तो आप सो नहीं सकते हैं, पलक गिरेगी भी तो तुरंत जग जाएंगे कि नहीं सोना नहीं है। इन चार कुमार कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी घूम लेते हैं कि उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो चिंता से मुक्त रहते हैं। जिसके पास ज्यादा वस्तु है, ज्यादा पैसा है, वो बहुत चिंता में रहता है, वो पैसे को कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, कौन सा बैंक में ज्यादा सेफ्टी है, उसको नापने में तौलने में लगा रहता है, इन्वेस्ट करने में कहाँ इन्वेस्ट करूं। और जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है। तो चार कुमार केवल भगवान का भजन करते हैं। जिसके पास ज्यादा सामान हो जाता है तो भजन कम होता है, ज्यादा सामान हो गया तो भजन कम हो जाता है और सामान बिल्कुल नहीं रहता है तो भजन अच्छा होता है इसीलिए वैरागी लोग ज्यादा नहीं रखते हैं, भालो ना खाइबे भालो ना परिबो। बैरागी भाई और कैसे है रति रमन प्रभु, भालो ना खाइबो भालो ना परिबो, आए ग्राम में वार्ता ना सुनिबे ना कहिबे, ना कहिबे ना सुनिबे काने, स्त्री संभाषण ना करीबे, हाँ इस स्वप्न में भी स्त्री संभाषण नहीं करना है। इसलिए बैरागी भाई जो बैराग्य का आचरण कर लेता है तो अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छा वस्तु रखना अच्छा के फेरे में नहीं रहता है, और जो अच्छा के फेरे में रह जाता है तो फिर माला फिरना भूल जाता है या भक्ति मार्ग को भूल जाता है इसलिए चार कुमार जो है हमेशा संग्रह से मुक्त रहते हैं, कोई संग्रह नहीं करते, अति संग्रह न कर्तव्य, उनके पास कौपिन भी नहीं रहता है, बिल्कुल निस्संग रहते हैं, आसक्ति से संग्रह से मुक्त होकर केवल भगवान का भजन करते हैं। इसलिए वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच गए कौमार अवस्था में, तो यही कारण है कि चार कुमार हमेशा कौमार अवस्था में रहते हैं, न बड़ा होंगे न दुनिया का कोई आकर्षण होगा न भोग की कामना होगी। इसलिए कहा जाता है कि भोजपुरी में एक कहावत है कि न गीत न नीक गीत गाइब न दरबार धके जाइब। पहले अच्छे जो गाने वाले होते थे उनके उनको राजा लोग दरबार में पकड़कर ले जाते थे, दरबारी कवि से अकबर के समय में बड़े बड़े गायक लोग थे, तानसेन बैजू बावरा, राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी लाल जो बड़े बड़े कवित करने वाले गायक लोग या विदूषक लोग राजा के दरबार में रहते थे, राजा जबरदस्ती उनको ले जाता था पकड़ करके, जो अच्छा गाते थे तो राजा के दरबार में राजा के प्रशंसा में वो लोग गाते थे। तो चार कुमारों ने सोचा कि अगर हम अच्छा संसार में अच्छा करके दिखाएंगे अच्छा मैनेजमेंट करके दिखाएंगे तो संसार में हमें फंसने का भय रहेगा, लोग शादी विवाह कर देंगे, जो लोग अच्छा पढ़ने में या कोई भी कार्य में बहुत निपुण होते हैं तो उनका जल्दी शादी हो जाता है, और जो बिल्कुल गंवार है अनपढ़ है तो उसका शादी भी नहीं होता है LLPP लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर तो उसका शादी भी नहीं होता है। तो जो ज्यादा अपना कला दिखाता है तो ज्यादा वो जल्दी जो है माया में गिर जाता है। इसलिए नीक गीत गाइब न दरबार धक्के जाइब। चार कुमारों ने यही प्लानिंग किया था कि हम लोग ऐसे रहेंगे जैसे लोग समझेंगे लोग मूर्ख हैं बिल्कुल। तो नंगे वो लोग घूमते थे कहीं भी जाते थे और जो भी मिलता था हाथ में ही लेकर खा लेते थे और पानी पशु की तरह पी लेते थे, मुंह लगा करके नदी में मुंह लगाकर पानी पी लेते थे। तो चार कुमारों को रोकने के द्वारा अभिशप्त होकर जय विजय सांप प्राप्त किए और उनको सांप जो है सात जन्म का था, लेकिन जब सांप मिला इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा तो जय विजय बहुत विदिग्न हो गए कि ये छोटे छोटे बच्चे और हमारी क्या गलती है, ये भी नंगे जा रहे हैं, कम से कम सभा में गोष्ठी में ड्रेस होना चाहिए जाने के लिए, जैसे स्कूल का ड्रेस है प्लेग्राउंड का ड्रेस है कोर्ट में वकील का ड्रेस होता है हर व्यक्ति के लिए प्रॉपर ड्रेस होता है, तो हम लोग तो अपना फर्ज अदा किए लेकिन फिर भी हमें सांप क्यों दिया गया। तो जय विजय ने बहस किया भगवान से विष्णु से, वो लोग भी आर्गुमेंट किए कि हम हमारी क्या गलती है, हमारा काम है रोकना से वॉचमैन का काम है, कोई अनधिकृत रूप से अगर कोई आता है या कोई ऐसा वस्तु लेकर आता है तो वॉचमैन का काम है रोक देना, चेक करना। तो हमने अपना ड्यूटी किया है, क्यों हमें साप मिला? तो भगवान तो जानते थे, भगवान ने पूर्व नियोजन किया था कि इनको इनका ट्रांसफर करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी को भी इन्होंने अपमानित किया है। लक्ष्मी जी और फिर चार कुमार और ऐसे जय विजय में भी थोड़ा ये था कि हम लोग बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा आदमी हैं हम लोग कि बैकुंठ लोग में किसी को हम लोग परमिशन देते हैं जाने के लिए, बिना हमारे परमिशन का कोई जा नहीं सकता है। तो उनको भी अपने पद का बड़ा गरिमा था कि हम बहुत बड़ा पद प्राप्त किए हैं। तो ये अपने गरिमा में अपने गौरव में रहते थे, तो लक्ष्मी जी को रोक दिए, चार कुमारों को रोक दिए, पूछे भी नहीं कि आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे, आपका क्या परिचय है, आप किनके पुत्र हैं। अगर ये पूछे होते कि आप कौन हैं, कहां जाना है, कहां से आ रहे हैं, तो शायद नहीं रोक पाते। तो बच्चे समझ कर रोक दिए, तो इसका दंड यह मिला। तो जय विजय कहे कि हमारा क्या दोष है? तो भगवान ने कहा कि देखो, जो भी हो, अगर ब्राह्मण कोई साप दे देता है तो उसको हम भी नहीं खत्म कर सकते हैं, ब्रह्म साप को हम भी नहीं दूर कर सकते हैं, हम ब्राह्मणों के ही अधीन रहते हैं, अहम भक्त पराधीनो। जैसे भगवान ने दुर्वासा और अम्बरीश के प्रसंग में कहा दुर्वासा जी से कि मैं ब्राह्मणों के अनुग्रहित हूं, जो ब्राह्मण जैसे करते हैं वैसे ही मैं उनका अनुशीलन करता हूं, उनका पीछे पीछे चलता हूं। कि ब्राह्मणों ने साप दिया है तो तुम्हें भौतिक जगत में जाना होगा, और एक इसमें छूट है कि अगर तुम शत्रु बन करके रहोगे, शत्रु भाव से मर जगत में, तीन जन्म में मेरे पास बैकुंठ में आ जाओगे, नहीं तो सात जन्म लगेंगे। कोई ब्राह्मण साप दे देता है तो सात जन्म तक वो आदमी उस अपराध को प्रायश्चित करता है। भगवान ने थोड़ा उनको कंसेशन दिया कि तीन जन्म में आप लोग मेरे धाम में वापस आ जाओगे। तो चार कुमारों के विषय में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि चार कुमार भगवान के धाम में क्या पहली बार जा रहे थे, क्या उनका कोई जय विजय से इंट्रोडक्शन भगवान ने कभी नहीं कराया था, या नहीं जानते थे, कभी और भी गए होंगे, जब इतने ब्रह्मा शिव जी के भी बड़े भाई हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम संतान हैं, और इतने काफी उम्र के हैं लेकिन कौमार अवस्था में रहते हैं, फिर भी जरूर गए होंगे कभी। लेकिन जय विजय को भगवान ने अपनी माया से उनकी मति को विमोहित कर दिया था, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्व नियोजित। हिरण्यकश्यपु का इस धरा पर आविर्भाव तथा भगवान के शत्रु के रूप में कार्यशील रहना पूर्व नियोजित था, पहले से नियोजित था कि चार कुमार आएंगे, उनके द्वारा ये अभिशप्त होंगे, फिर असुर योनि को प्राप्त होंगे। तो पहले के जैसे मैंने कहा था कि नीक गीत गाइब न दरबार धके जाए, तो पहले के राजा लोग बड़े बड़े दरबारी कवि रखते थे, जैसे जय सिंह के दरबार में बिहारी लाल रहते थे। तो बिहारी लाल एक बार राजा जय सिंह से मिलने की गए जयपुर, राजा जय सिंह के नाम से ही जयपुर शहर बसा है, जो जयपुर शहर है वो जय सिंह के नाम से बसा। तो तो जय सिंह बहुत धर्मात्मा राजा थे, भक्त थे, और बिहारी कभी एक दिन गए, फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन भी गए। तो एक दिन गए तो उनको नहीं मिलने दिया गया, फिर दूसरे दिन गए तो भी नहीं मुलाकात हुई, तीसरे दिन गए तो भी नहीं मुलाकात हुई। तो उन्होंने एक पद लिख करके दिया और कहा कि ठीक है राजा व्यस्त हैं, तो ये पद जो है उनको आप दे देना। उनके मंत्रियों से उन्होंने एक पद लिख करके दिया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। बिहारी जी ने एक पद में सारा वृतांत जो है लिख दिया। राजा जो है भोग विलास में राज कार्य को भूल गए थे, प्रजा पालन का जो दायित्व था भूल गए थे, और प्रजा में क्या जरूरी है, प्रजा को क्या चीज का अभाव है, सब देखना भूल करके भोग विलास में पड़ गए थे। तो बिहारी लाल ने एक पद में लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली, अली माने भौंरा होता है, कली माने फूल, जो अभी अर्ध विकसित होता है उसको कली कहते हैं, जो पूरा खिला नहीं होता है। तो राजा ने राजा को भौंरा के रूप में संबोधित करके बिहारी लाल ने कहा कि हे राजा, अभी कली फूल जो है पूर्ण विकसित नहीं है, तभी भौंरा जो है उसमें आसक्त हो गया है, तो जब फूल विकसित होगा तो आगे क्या हाल होगा। आपको तो अपने प्रजा का पालन करना चाहिए, धर्म का, धर्म से प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करना, नहीं तो राजा जो है जो अपने प्रजा का पालन नहीं करता है वो नरक में चला जाता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को बहुत दुख होता है, खाने पीने का अभाव होता है, तो राजा जो है नरक गामी हो जाता है। ये पद लिखे तो उसी तरह से जय विजय अपने कार्य में लापरवाही कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने चार कुमारों के माध्यम से उनको ठीक किया। इस संदर्भ में अनेक कथाएं हैं कि भगवान अपने भक्तों का कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, उनका अपराध को भी थोड़ा सा कष्ट दे करके उसको ठीक कर देते हैं। तो जय विजय के अंदर जो भी अपने पद का गौरव हो गया था कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं, हमारा बहुत अधिकार है, तो उसको ठीक करने के लिए तीन जन्म तक, जबकि सात जन्म तक असुर बनते, लेकिन तीन जन्म तक उनको, तीन जन्म के बाद वापस बुला लिए। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जगत में चारों कुमारों को सनत 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 कुमार सनंदन तथा सनातन नामक ब्राह्मणों ने साप दिया था, क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को रोका था। भगवान ने अपनी सेवकों को दिए गए साप को स्वीकार किया, वे भौतिक जगत में जाने और साप से मुक्त होने पर वैकुंठ लोक में वापस आ जाएंगे। भगवान ने उसको स्वीकार किया। कोई सेवक गलती करता है तो स्वामी का गलती माना जाता है, तो भगवान ने चार कुमारों से क्षमा याचना किया कि हमारी ही गलती है, अगर सेवक गलती करता है तो स्वामी का गलती माना जाता है, इसलिए हम सांप को स्वीकार करते हैं, भगवान ने स्वीकार किया। और वैकुंठ लोग और भौतिक जगत में जाने और सांप से मुक्त होने पर वैकुंठ लोग आपस आने के लिए राजी हो गए। यद्यपि जय तथा विजय अत्यंत उद्विग्न थे, लेकिन भगवान ने उन्हें सलाह दी कि शत्रु की तरह कार्य करें, जिसे तीन जन्मों के बाद वे वापस आ सकेंगे। भगवान ने कहा कि आप लोग मर्त जगत में जाइए और शत्रुता के रूप में हमसे ही शत्रुता करो। आप लोग भगवान से बैर करना, शत्रुता करना, जैसे हिरणकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में है, हिरण्याक्ष जो है के लिए भगवान ने शुकर अवतार लिया, हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया था बहुत गंदे जगह पर, पृथ्वी को ऐसे जगह पर छुपाया था जहां बहुत गंदा था, तो सुअर के रूप में भगवान अवतार लिए। सुअर गंदगी में भी जाता है, बल्कि गंदगी को भी साफ कर देता है। तो भगवान पृथ्वी को जो ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने धरोहर रूप में सृष्टि करने के लिए दिया था, और हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को रसातल में गंदे जगह पर छुपा दिया था, तो भगवान शुकर रूप धारण करके रसातल में गए और हिरण्याक्ष का वध कर दिए। और हिरणकश्यप के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, नर और सिंह, आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप धारण किया। न मृगम न मानुषम, न पशु शरीर में न मनुष्य शरीर में, दोनों मिलित था, संयुक्त था। जब ये दोनों भगवान इस आदेश पर जय तथा विजय ने भगवान के शत्रुओं की भूमिका निभाई, और जब ये दोनों मृत थे तो समस्त विष्णु दूतों ने समझा कि भगवान द्वारा हिरणकश्यप का वध एक प्रकार से उस पर विशेष कृपा थी। तो भगवान ऐसे जय और विजय हिरणकश्यप और हिरण्याक्ष का वध करके उन पर विशेष कृपा किया है, और ब्राह्मणों के हिसाब से उनको मुक्त किया है। तो भगवान का मारना भी विशेष कृपा है, जो जय हिरणकश्यप को मारे हैं तो भगवान की ये विशेष कृपा है। इसलिए वैकुंठ लोक के जो पार्षद हैं वे भगवान नृसिंहदेव से कहते हैं कि आपका मारना भी विशेष कृपा है। सामान्य लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, या हिरणकश्यप को मार करके आपने विशेष कृपा किया है, क्योंकि 7 जन्म लग जाते आपकी विशेष कृपा से ब्रह्म साप से वो मुक्त हो गया है 3 जन्म में ही। तो भगवान किसी को अगर मारते भी हैं या कष्ट भी देते हैं तो डॉक्टर का सर्जरी जैसा है, जैसे डॉक्टर किसी का पेट का हार्ट का सर्जरी कर देता है तो उस पर वो कृपा करता है, उसको बल्कि रोग से मुक्त कर देता है। डॉक्टर किसी को बाईपास सर्जरी करता है तो उसमें उसका हित है, जिस व्यक्ति का ऑपरेशन होता है वो बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो किन्नर लोक के वासियों ने कहा कि हे प्रभु, आपने हिरणकश्यप का वध करके वैसे ही उस पर कृपा किया जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत काल से बीमारी से ग्रस्त है, अनेक बीमारियों से ग्रस्त है, और कोई उसके बीमारी से मुक्त कर दे, कोई औषधि देकर उसको सारे रोगों से मुक्त कर दे, उसी तरह आपने रोग से मुक्त कर दिया है, ये आपकी कृपा है। भगवान की कृपा भिन्न भिन्न रूपों में होती है, किसी को भगवान प्रकारांतर से कष्ट दे करके, किसी को भोग ले करके, उसके भोग की सामग्री छीन करके, उसका सब कुछ ले करके उस पर कृपा प्रदान करते हैं। और विशेष कृपा भगवान उस पर करते हैं जिसका सब कुछ ले लेते हैं। अस्याहम अनुग्रहणामी हरिष्य तदनम सनई, तो हिरण्यकश्यप के ऊपर भगवान का ये विशेष कृपा है, बल्कि उसका भगवान का मारना नहीं है, विशेष कृपा है। यही वैकुंठ लोक के पार्षदों ने भगवान से कहे कि आपका ये विशेष कृपा है, जिस कृपा के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी, बड़े बड़े यक्ष किन्नर गंधर्व चारण सिद्ध मुनि लोग भी जिस कृपा के लिए जन जन यत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, कोटि कोटि यत्न करके भी उस कृपा को प्राप्त नहीं करते, वो असुर जो है वैर भाव से शत्रुता करके आपकी कृपा को प्राप्त कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा इसका सौभाग्य है। और नृसिंह देव के रूप में आप इस जगत का सौभाग्य वर्धन करने के लिए आए हैं। भगवान नरसिंह देव आपका ये जो अवतार है जगत का मंगल करने वाला है, सौभाग्य वर्धन करने वाला है। इस तरह से बहुत सुंदर प्रार्थना जो है वैकुंठ लोक के पार्षदों ने भगवान नरसिंह देव से इस तरह से प्रार्थना किया है कि आपने बहुत विशेष कृपा किया है हिरण्यकश्यप के ऊपर, जो आपका पार्षद जय नाम से जाना जाता था, जो वैकुंठ के द्वार पर रहता था और ब्राह्मणों के साथ से असुर जोनि को प्राप्त हुआ था, आपने इसको मार करके जल्दी ही अपने धाम में इसको भेज दिया है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? तो जय विजय के बाद तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, फिर रावण और कुंभकर्ण हुए, अरे रावण कुंभकर्ण हुए, तो इनका लंबा आयु था ना?
नहीं, तो उसका मोक्ष होने के बाद कहाँ रहते थे? फिर से ड्यूटी पे जाते थे वैकुंठ में या कहीं दूसरे लोक में रहते थे?
अब रावण और कुंभकर्ण बने तो इस जगत में आए, दंत वक्र शिशुपाल बने तो इसी लोक में आए।
अरे बीच में क्या समय?
बीच में कहाँ, बीच में होता ही नहीं है, बीच में क्या बीच में ऐसा नहीं कि बहुत गैप नहीं हो जाता है यहाँ से माल ट्रांसफर हुआ वो गोदाम में गया, वहाँ से वहाँ ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, बीच में कहाँ समय लगता है? कोई ट्रेन आती है जंक्शन में तो कितना मिनट रुकती है?
राम और कृष्ण के जन्म के बीच में लाखों साल का डिफरेंस,
उतने समय तक उस जोनी में रहे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में रहे या और नहीं तो रावण कुंभकर्ण के रूप में रहे, अब बीच में ऐसा नहीं कि ट्रेन आई तो फिर ट्रेन कहाँ सेटरिंग में चली जाती है ना है? फिर समय आपका कहना है कि इसके बीच में कहाँ जाते हैं वो भगवान के लीला में ही रहते हैं, चाहे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, चाहे रावण कुंभकर्ण के रूप में, या चाहे दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में। बोलिए हनुमान जी।
हरे कृष्ण। तो एक समय कृष्णनाम प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य है प्रवचन दिए थे मंदिर में, भागवत प्रवचन, तो उन्होंने बताया कि भगवान अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं, तो एक रस है वीर रस, जिसमें प्रभु के मन में इच्छा हुई लड़ाई करने की, लड़ने की, तो उनको जब लड़ना है तो और किसी से लड़ेंगे नहीं, अपने भक्तों के साथ ही आनंद लेते हैं। तो जब जय और विजय द्वारपाल थे तब उन्होंने अपने एक दूसरे को भुजा दिखा रहे थे, बोले हमारे भुजा कितने मजबूत है और प्रभु की भुजा कितनी कोमल है और कितनी नाजुक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जय और विजय के शरीर में लीला शक्ति प्रवेश किया, इसलिए उनका व्यवहार बदल हुआ। और फिर उन्होंने प्रभु ने सोचा कि अभी किसके भुजा में कितना बल है एक बार देख लेते हैं, तो उन्होंने उस इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे कार्य हुआ। और जब जय और विजय को श्राप मिला तब द्वारपाल का इच्छा क्या था कि अंदर जाना नहीं है, नो एंट्री। और उनका इच्छा क्या था, प्रभु का दर्शन करना है। तो प्रभु इतने दयालु है, स्वयं चलकर आए और उनको दर्शन भी मिला। और इनका इच्छा क्या था, अंदर नहीं जाना है। दोनों की भी इच्छा पूरी हुई।
धन्यवाद।
एक मिनट, तो इसके बाद फिनिशिंग फ्यू मिनट्स, तो उन्होंने जय विजय और सामने उन्होंने प्रणाम किया प्रभु को, चार कुमारों ने। और उन्होंने कहा कि हमारा गलती है कि आपके द्वारपाल को श्राप दिया, और आप चाहे हम दोनों को भी दंड दे या हमें दंड दे, उनको पुरस्कार करें, आप जो भी करना चाहोगे हम आपके प्रति समर्पित हैं। तो प्रभु ने कहा कि ब्राह्मण के प्रति मेरा भाव है, अगर मेरी भुजाएं भी उनके विरोध में कार्य करेगी तो मैं सुदर्शन चक्र के द्वारा इसे काट दूंगा। तो ब्राह्मण का अपराध को मैं सही नहीं सकता हूँ। उन्होंने ब्राह्मण की महिमा बताई,
भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा दर्शाई है। नमो ब्रह्मण देवाय, तो ऐसे सब कारण भगवान ही हैं। भगवान की इच्छा थी, नहीं तो बैकुंठ से जय विजय नहीं आते। तो हनुमान जी ने अच्छा कमेंट किया है, ऐसे भगवान सबको प्रेरित करते हैं। उधर जय विजय को भी रोकने के लिए प्रेरित किए और चार कुमारों को प्रवेश करने के लिए प्रेरित किए। भगवान की पूर्व नियोजित योजना थी, क्योंकि भगवान अपने मंजुल महिमा को इस भव्य जगत में फैलाना चाहते थे और भगवान वीर रस का स्वादन करना चाहते थे। इसलिए जय विजय के द्वारा ब्राह्मणों को रोकना और उनके द्वारा अभिशप्त होकर के हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में आना, तो सबके पीछे भगवान ही हैं, सर्व कारण भगवान है। एक बार हमारे गांव में की घटना है कि कुछ तिलकहरू आए थे शादी करने के लिए, एक लड़के का विवाह करने के लिए। तिलकहरू बोलते हैं, लड़का देखने के लिए लोग आते हैं ना शादी के लिए अपने लड़की को। तो गांव में आए थे लड़के देखने की, कोई लड़का हो पसंद तो हम लोग अपनी लड़की का विवाह यहाँ करेंगे। तो एक लड़का था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, भैंस चराता था, तो उसको उसकी शादी नहीं हो पाती थी। तो घर वालों ने उसको सिखाया कि जब लड़की वाले बुलाएंगे तो पूछेंगे कितना पढ़ाई किए हो, कहाँ से किए हो, कब किए हो। तो उसको सिखाया गया कि बोलना कि हाई स्कूल पास हूँ, दसवीं पास हूँ। कहाँ से, तो नौहट्टा हाई स्कूल से। कब पास किए हो, तो 2001 में। तो उसको सिखा करके सब भेजा गया कि लड़की के जो लड़की पक्ष से जो आए हैं उनके पास जाना और पूछें क्या नाम है तो नाम बताना, पिताजी का क्या नाम है, कितना पढ़ाई किए हो तो हाई स्कूल पास हूँ, कौन सा हाई स्कूल से, तो बोला नौहट्टा हाई स्कूल। कब पास किए हो, तो 2001 सिखाया गया था कि 2001 में, तो बोला 1001 में। तो जितना सिखाया गया था वो बोला 1001 में। तो वो लोग बोले कि आप तो बहुत पहले पास कर लिए हैं। आपकी आयु बहुत लंबी है। तो सब कुछ सिखाया था, तो जो लड़की पक्ष वाले समझ गए कि ये जो है पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था वो। तो बाद में गांव में बहुत लोग मजाक करने लगे कि उसका नाम दारा सिंह था। तो मैं भी गया था उस समय गांव, तो मैं कहा कि दारा सिंह कैसे गलती हो गया, आते कहीं मिस्टेक हो गया, 2001 बोला था और 2001 मैंने बोल दिया। तो वास्तव में कोई कितना भी सिखाए लेकिन जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की यही इच्छा थी कि जय विजय जो है अभिशप्त हो और पृथ्वी पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हो, और भगवान अपने नृसिंह जो रौद्र लीला वीर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में आना चाहते थे और अपनी इस मंजुल महिमा को भक्तों के बीच में उस आनंद को प्रदान करना चाहते थे, इसलिए भगवान ही इसके पीछे कारण। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की यह पूर्व नियोजित लीला थी, भगवान ही चाहते थे कि जय विजय को साप मिले। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।